यू मस्ट हैव मेट इजिली मोर देन 100. उन सारों में कॉमन चीज क्या होती है साइकोलॉजिकली?
एवरीवन इज बॉर्न एज अ डेमन. बहुत सारे के आपने वीडियोस देखे होंगे किस तरह से 60-60 लोगों को गला काटा जाता है.
ये ऐसी सिचुएशंस थी जो आपके लिए साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थी ऑन अ पर्सनल लेवल.
1990 में मेरे साथ एक PSO होता था, उसको किडनैप किया टेररिस्टों ने. इंटरोगेट करते वक्त आस्किंग अबाउट मी, उसको गरम प्रेस करते थे और पूरी बॉडी को लगा.
एम्बुश की पहली गोली चली, आपकी पहली रिएक्शन क्या था?
उधर उन्होंने पूरा गांव खाली कराया, दोनों तरफ सड़क के जो दुकानें थी उसके ऊपर UMG यूनिवर्सल मशीन गन्स फिट की. उसके बाद मेरी कार थी उस पर कोई हंड्रेड्स ऑफ बुलेट्स आए, ये हाथ पूरा कट गया था.
जब अर्ली 90s का फेज चल रहा था और कश्मीरी पंडित की एग्जोडस हो रही थी, आपके दिमाग में क्या चल रहा था?
दिस वॉज 7th एग्जोडस ऑफ कश्मीरी पंडित, पहला नहीं था. उनकी औरतों के हुए, उनको निकाला गया. एक दिन पहले किश्तवाड़ बस जा रही थी, सबको नीचे उतारा, कम्युनिटी वाइज खड़ा किया, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी उनको सबको गोली मार दी. 370 हटा देना इज नॉट द फाइनल सोल्यूशन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब तक कश्मीरी पंडितों को रीसेटल ना कर दे तब तक मैं समझता हूँ इस जंग में पूरी कामयाबी नहीं.
दोस्तों, पोस्ट इंडिपेंडेंस भारतीय हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, सबसे ज़रूरी पहलू कश्मीर का पहलू रहा है. पर कश्मीर की असलियत आपको मीडिया से नहीं जाननी चाहिए, आपको न्यूज़ चैनल से नहीं जाननी चाहिए. कश्मीर की असलियत आपको उन लोगों से जाननी चाहिए जिन्होंने सच में 90s में 2000s में वहाँ काम किया, टेररिज्म का सामना किया. उनकी कहानियाँ, उनके पर्सपेक्टिव्स मैटर करते हैं आपके व्यू पॉइंट ऑफ हिस्ट्री को शेप करने में. तो जो भी कश्मीर को लेकर आपके ओपिनियंस हैं, आपके सोच विचार हैं, उन्हें पॉज करके पहले इन सारे लोगों की बातें सुनो. हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए इसी टॉपिक को लेकर. एक और ज़बरदस्त पॉडकास्ट है विथ द फॉर्मर DGP ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, IPS SP वैद सर, आज TRS पर. एक बहुत इंटेंस और बहुत ट्रूथफुल कॉन्वर्सेशन करेंगे हमारे साथ. एंजॉय टुडेज एपिसोड. जय हिंद. SP वैद सर, आपका स्वागत है TRS पर. कैसे हो सर?
एकदम बढ़िया, धन्यवाद
सर. बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते हैं शो पर, बॉलीवुड के लोग आते हैं, क्रिकेटर्स आते हैं, पर जब मैं आप जैसे एक्चुअल वॉरियर्स से मिलता हूँ ना, एक अलग फीलिंग होती है उन दिनों पे. तो ऑनर टू हैव यू इन द स्टूडियो. जस्ट वांट टू से दैट.
धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया.
एंड आई होप कि आप ये जानते हो कि आप जैसे लोगों की कितनी रिस्पेक्ट है इंडियन ऑडियंसेस में. लाइक पीपल रिस्पेक्ट यू, पर आप लोगों को कन्वे कैसे करें ये पता नहीं लोगों को. तो ऑन देयर बिहाफ एट द स्टार्ट ओनली वॉन्ट टू कन्वे दैट रिस्पेक्ट.
बहुत बहुत धन्यवाद. और वी ऑल्सो हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर आर इंडियन सिटीजन्स, जो हमारे देश के रहने वाले हैं. उनके लिए ही हर जवान लड़ता है, इसी देश के लिए लड़ता है. और मैं समझता हूँ ये बिल्कुल सही कहा आपने कि लोग जानते नहीं कि हम किस तरह से, जो जवान बॉर्डर पे शहीद होता है उसको किस तरह से कन्वे करें, उसके परिवार को किस तरह से कन्वे करें ये. लेकिन ऐसी फीलिंग पूरे देश में है, मैं जानता हूँ ये बात.
हाउ डू यू लुक बैक एट योर लाइफ, जब आप मुड़ के देखते हो क्या फील होता है?
बहुत सेटिस्फाइंग, बहुत सेटिस्फेक्शन होती है कि भगवान ने मुझे इस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया,
देश की रक्षा के लिए.
बहुत, ये कोई पुराने जन्म मेरे ख्याल अच्छे होंगे जो ईश्वर ने मौका दिया देश की सेवा के लिए. और मैं समझता हूँ ये खुशकिस्मती है. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे, चाहे वो स्टेट पुलिस में हों, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस में हों, फौज में हों, एयरफोर्स और बाकी विंग जो फौज के हैं. तो ये बहुत खुशकिस्मती होती है कि अपनी मातृभूमि के लिए आप कुछ कर सको.
जी
सर हाल ही में कश्मीर टूरिज्म को बहुत बूस्ट्स मिले हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं अब कश्मीर घूमने जा रहे हैं। मैं भी हाल ही में ही गया था पहली बार एज एन अडल्ट, पिछले महीने गया था। इट्स अ लॉट टू टेक इन, यानी कि वो एक अलग ही जगह है। हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़बरदस्त है, ऑब्वियसली सीनरी बहुत ज़बरदस्त है, पर जिन लोगों ने करंट अफेयर्स को स्टडी किया है, जिन लोगों ने हिस्ट्री को स्टडी करी है, उन्हें पता चलता है कि यार ये सब ट्रैवल पॉसिबल है आप जैसे लोगों की वजह से। तो जब आप अभी कश्मीर इन 2024 को ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या चलता है आपके दिमाग में? एंड अभी कश्मीर की रियलिटी क्या है वर्सेस 10 years ago, वर्सेस 20 years ago, वर्सेस 30 years ago, ये भी बताइए।
देखो, कश्मीर जैसी खूबसूरती शायद ही कहीं होगी। लोग स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, लेकिन मैं स्विट्जरलैंड भी देखा है। मैं समझता हूँ कुदरत ने जो कश्मीर को खूबसूरती दी है, वो बहुत दुनिया में बहुत कम जगहों पे है। 30 years पहले, जब हम नए नए ASP और SP आए 35 years पहले, तो कश्मीर की जो हालत बिगड़ते देखी, इतनी बुरी हालत थी कि आदमी सोच भी नहीं सकता था जो आज सिचुएशन है कि ऐसा भी दिन एक दिन आएगा। और फिर इसमें बहुत सारे उतराव चढ़ाव आए, बहुत सारे किस तरह से हालात बिगड़ते बिगड़ते 90 से फिर एक ऐसी टेररिज्म पीक पे आ गया। लगता था कश्मीर वैली पूरी उमड़ आई, और मैं 90s का बता रहा हूँ, फिदाई अटैक हो गया, मतलब सुइसाइडल अटैक। तो उन्होंने ये फेनोमेना स्टार्ट किया, आर्मी कैंपर, CRP पैरामिलिट्री कैंप पर, पुलिस स्टेशनों पर सुइसाइडल अटैक्स। उनको फिदाई नहीं कहना चाहिए, वो फिदाई बोलते हैं, हम उसको सुइसाइडल बोलते हैं। तो सुइसाइडल अटैक्स करना शुरू किए, और उससे बहुत सारा कैजुअलिटीज होती थी, जैसे हमारी असेंबली पर अटैक हो गया, बहुत सारी पुलिस एस्टेब्लिशमेंट पर अटैक हुआ, पुलिस स्टेशनों पर अटैक हो गया, CRP और BSF के जो बटालियंस थी उन पर अटैक हो गया, आर्मी हेडक्वार्टर बदामी बाग पे अटैक हो, इस तरह के बहुत सारे अटैक्स होने लगे। इट वॉज सेंसेशनल कि 4 टेररिस्ट ड्रग लेके घुस गए मरने मारने पर, और 4-5 लोगों को संतरियों को मारा, इस तरह के अटैक होने लगे। तो वो फेनामेना भी आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल, इनफैक्ट ये जो फेज था ये सुइसाइडल अटैक फेना, उसी वक्त ये पार्लियामेंट अटैक, JNK असेंबली अटैक, बहुत सारे अटैक्स हुए। उसके बाद फिर 2002 में इलेक्शन करवा पाए हम दोबारा, जिसमें कोलिशन गवर्नमेंट PDP और कांग्रेस की, जिसमें मुफ्ती सैयद चीफ मिनिस्टर बने। तो ये एक फेज आए। उसके बाद टेररिज्म का, इनफैक्ट 2001 वाज द पीक ईयर ऑफ टेररिज्म, और उसके बाद टेररिज्म डाउन होने लगा, क्योंकि साइमल्टेनियसली एक इशू हुआ जो ये पूरा बॉर्डर एरिया था, इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC। इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारे अखनूर तक, फ्रॉम कठुआ डिस्ट्रिक्ट टू अखनूर, जम्मू रीजन का, और उसके बाद LOC पड़ता है। इस सारे एरिया में जब हमने बार बार टेकअप किया कि जिस तरह पंजाब में फेंसिंग करने से टेररिज्म कंट्रोल है, आप यहां भी करिए, तो उस वक्त की यूनियन गवर्नमेंट जो वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया, और फिर वो बॉर्डर बनने से, जो फेंसिंग होने से, नंबर ऑफ टेररिस्ट केम डाउन। एट ए गिवन टाइम 2,500 टेररिस्ट अगर होता था 90s में, तो फेंसिंग होने के बाद वो 200-250 तक, मतलब 90% कंट्रोल हो गया। तो इतना इफेक्ट बॉर्डर फेंसिंग से हुआ, जिसको इलेक्ट्रिफाई भी किया गया, बहुत सारे गैजेट्स इस्तेमाल करती थी फौज भी और BSF भी।
वो 10% घुसते कैसे था?
वो भी घुसते थे उसमें। देखो, पाकिस्तान एक ऐसा डूबियस नेशन है, वो कुछ भी करेगा इसके लिए। जैसे आप पहले क्या होता था, टेररिस्टों को गाइड्स ले जाते थे, टेररिस्टों को इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए गाइड्स का इस्तेमाल किया जाता था, वायरलेस पे बोलते थे कि RSpura में वो गाइड है, उसके साथ कॉन्टेक्ट पाकिस्तान ISI एजेंसी, क्योंकि हमारे बीच भी ऐसे लोग हैं जो देशद्रोही हैं, जो इन मदद करते हैं, पैसे के लिए करते हैं, किसी चीज के लिए भी करते हैं, स्मगलर्स को यूज करते थे, जो ट्रांस बॉर्डर स्मगलर्स होते हैं, जो पाकिस्तान की चीज इधर और इधर की चीज उधर करते हैं। ड्रग्स लाने में मदद करते हैं, तो उन लोगों का इस्तेमाल करता था पाकिस्तान। जब फेंसिंग हो गई तो फेंस के नीचे से टनल निकालते, उसमें से टेररिस्ट निकलते हैं। उस जब उस पे भी नजर रखी फोर्सेस ने, तो फेंस को इलेक्ट्रीफाई किया, तो प्लास्टिक चेयर यूज कर, प्लास्टिक स्टेयर्स यूज करने लगे, उसमें यू कैन अवॉइड दिस। उसके बाद अब टेक्नोलॉजी आई ड्रोन की, तो हम ड्रोन यूज करते हैं मेडिकल फैसिलिटीज के लिए, फायर सर्विसेज के लिए। हम ये आपकी नीयत पे डिपेंड करते हैं, पाकिस्तान की नीयत ही गड़बड़ है ना, तो वो इसको ड्रोन को इस्तेमाल करते हैं ड्रॉप करने के लिए ड्रग्स, हथियार, पिस्टल, आईडी। इवन मैंने सुना है कुछ ऐसे ड्रोन चाइना से उन्होंने लिए हैं जिससे वो टेररिस्टों को भी, मैन को भी ड्रॉप कर सकते हैं। और ड्रोन का फायदा ये है कि आपको बॉर्डर पे नहीं उतारना है, 10 किलोमीटर अंदर ड्रोन जा सकता है। पाकिस्तान हर चीज को इस्तेमाल उसकी, देखो आज पाकिस्तान डाउन है, आज टेररिज्म में अपार्ट फ्रॉम जो दृढ़ संकल्प है आज की गवर्नमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो गवर्नमेंट है 2014 के बाद, उन्होंने सख्त पॉलिसीज लाई और इसको एक फर्मली डील किया, उससे बहुत कंट्रोल हुआ। 370 के बाद सिचुएशन बहुत बदली है, लेकिन पाकिस्तान की डीप स्टेट की नीयत में कोई चेंज नहीं आई है। वो आज डाउन है, आज उनको खाने के लाले पड़े हैं, आटा नहीं मिलता है। मैं उनकी चैनल्स देखता हूं, लेकिन उनकी कोई कहे उनकी डीप स्टेट की नीयत में कोई बदलाव आया नहीं आया। तो कल को फिर वो पैसा उनके पास होगा, वो आपको फिर यही करेंगे, इसलिए बड़ा केयरफुल रहना जरूरी है। तो मैं ये बता रहा था इस फेज में, फिर जो 2001 वाज द पीक ऑफ टेररिज्म।
सर ताकि लोग एसपी वैद सर को ज्यादा जाने, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, प्लीज डोंट माइंड। एक बार आप अपना हाथ दिखा सकते हैं कैमरे के सामने और समझाइए कि इस हाथ के पीछे स्टोरी क्या है।
ये हाथ पूरा कट गया था, ये एक अटैक हुआ था, ये हाथ पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया है। कई बार मैं जब सलूट करता हूं तो ये उंगली सीधी नहीं हो सकती, ये जो उंगली है ये दो पिन पर खड़ी है, तो इसको रिकंस्ट्रक्ट प्लास्टिक सर्जन ने किया है। तो ये मैं डीआईजी बारामूला था, बारामूला कुपवाड़ा रेंज, एक बॉर्डर एरिया है कश्मीर का। ये 23 मार्च 1999 की बात है। तो आई वाज लुकिंग आफ्टर द चार्ज ऑफ आईजी कश्मीर, आईजी कश्मीर का मेरे पास चार्ज था। तो मैं 4-5 दिन के लिए श्रीनगर हेडक्वार्टर, कश्मीर वैली का जो सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर होता है आईजी कश्मीर, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, तो मैं उसका चार्ज मेरे पास था। आई वाज आस्क्ड टू स्टेशन इन श्रीनगर, तो मैं 4-5 दिन के लिए वहां आया था। दिन भर टेरर एंटी टेरर ऑपरेशन करते रहे, शाम का वक्त आया तो मुझे मैसेज आया कि आपको वापस बारामूला, कल हाफ द कैबिनेट इज कमिंग देयर सोपोर में, तो आप वहां आइए। तो मैंने कहा मेरी जरूरत नहीं है, मैं रेंज डीआईजी हूँ, डिस्ट्रिक्ट एसपी एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोनों हैं, तो दे कैन हैंडल इट, बट आई वाज टोल्ड कि नहीं आप भी वहां जाइएगा। तो मैं ऑपरेटर को बुला के बोला कि आप गाड़ियां तैयार करिए, मुझे वापस बारामूला जाना है। तो ऑपरेटर ने सोचा कि डीआईजी साहब वापस जाएंगे, वहां खाना नहीं होगा, वो खाना मुझे बहुत महंगा पड़ा। उसने वायरलेस, उन दिनों हमारे पास मोबाइल नहीं होते थे, 99 की बात कर रहा हूँ, दीज मोबाइल्स वर नॉट देयर, तो हमारे पास कम्युनिकेशन का सिस्टम होता था वायरलेस सेट्स। तो वायरलेस सेट पे उसने बोल दिया कि खाना तैयार रखिए, डीआईजी साहब आएंगे। दैट वॉज इंटरसेप्टेड बाई टेररिस्ट, द टू ग्रुप्स, वन फ्रॉम क्रंक शिवन इन सोपोर एंड वन समवेयर नियर डाउन द हिल टंगमर के, उन दोनों ग्रुप्स ने प्लान किया कि ये आ रहा है, इसको आज अटैक करेंगे। तो उन्होंने एक पुतखा गांव है विच इज 1 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ सोपोर क्रॉसिंग, बारामूला को जाते हुए जो हाईवे है, नेशनल हाईवे श्रीनगर टू बारामूला, तो उधर उन्होंने पूरा गांव खाली कराया। दोनों तरफ सड़क के जो दुकानें थी उसके ऊपर यूएमजी यूनिवर्सल मशीन गन्स फिट की, और जब हमारा मोटरकेड आया उस पर सैकड़ों गोलियां चलाई। फ्रंट एस्कॉर्ट जेएनके पुलिस का था, उस पर गोलियां आई, वो निकल गया। उसके बाद मेरी कार थी जो बुलेट प्रूफ थी, एंड थैंक्स गॉड कि बुलेट प्रूफ थी। अगर उस पर कोई हंड्रेड्स ऑफ बुलेट्स आई, और अगर वो बुलेट प्रूफ नहीं होती तो बढ़ता बन गया था। तो उसमें से लेकिन और वो एक गोली जो है वो फ्रंट जो बुलेट प्रूफ ग्लास था उसको पियर्स कर गया, बिकॉज बुलेट प्रूफिंग इज अगेंस्ट AK-47, नॉट अगेंस्ट यूनिवर्सल मशीन गन,
किसका पावर ज्यादा होता
है, वो रिपीट फायर होता है बार बार
एक ही जगह,
एक ही जगह, तो वो तोड़ देगा। तो उससे गोली निकली और ड्राइवर को उसका लेफ्ट शोल्डर से क्रॉस कर गई। दूसरी गोली जो है वो साइड से निकली, विंडो से, विंडो में वहां लोहा पतला होता है, वो मेरा हाथ पूरा काट गई। इतनी देर में टेररिस्ट ने, वो कोई 18 टेररिस्ट थे, 17-18 टेररिस्ट, उसमें से एक टेररिस्ट आया, ही वांटेड टू टेक मी होस्टेज। तो मेरी गाड़ी फॉर्चुनेटली लॉक था दरवाजा, वो दरवाजा खोलने के लिए कोशिश कर रहा था ताकि मुझे किडनैप करे, दैट वॉज हिज इंटेंशन, बट ही कुड नॉट ओपन द डोर। बट इतनी देर में मेरी गाड़ी खींच गई, मैंने अपने ड्राइवर को जो इंजर्ड था उसको मैंने पीठ पे कहा, हाथ बोल मार के कि गाड़ी निकालो, क्योंकि आई न्यू अगर आप उस सिचुएशन से निकलोगे नहीं तो यू विल बी किल्ड। तो इतनी देर में उन्होंने पीछे से ग्रेनेड मारा, एक स्प्लिंटर जो है वो मेरे उस लेफ्ट विंडो से निकल के मेरे स्कल में घुस गया। आई वॉज लक्की कि ब्रेन को डैमेज नहीं किया, उसने स्कल में जाके एम्बेड हो गया, बट ब्लीडिंग होने लगी इतनी, और हाथ कट गया, इधर ग्रेनेड लग गया स्प्लिंटर। बट आई एक उस वक्त मुझे एक तो पहली थॉट भगवान की तरफ गई, और दूसरी थॉट फैमिली की तरफ, एंड देन थर्ड थॉट केम जो हमने सीखा था ट्रेनिंग में कि एम्बुश जो ऐसा होता है उसका बेस्ट वे टू इज टू एस्केप फ्रॉम द एम्बुश बिकॉज यू डोंट नो वेयर योर एनिमी इज। तो मैंने ड्राइवर और उसको कहा कि गाड़ी निकालो, तो उसने जब मैंने बोला हिम्मत की, इंजर्ड कंडीशन में वो गियर लगा, गाड़ी खींच गई, बिकॉज बुलेट प्रूफ गाड़ी भारी होती है। हल्की सी बारिश हो रही थी, अंधेरा था, रात का वक्त था, बट आई टुक ओवर वायरलेस सेट फ्रॉम दैट ऑपरेटर एंड कॉल्ड बारामूला दैट आप हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर रेडी रखिए, और डिप्टी कमिश्नर SSP और SHO को बोलिए वहाँ डॉक्टर सर्जन होना चाहिए। वहाँ से अभी भी 10 किलोमीटर था वो, तो माई वरी वॉज ब्लीडिंग से डेथ हो जाएगी, बट वेन आई रीच देयर तो फॉर्चुनेटली ब्लड वॉज देयर, ऑपरेशन वॉज अवेयर, देर वॉज नो एनेस्थीसिया अवेलेबल, लोकल एनेस्थीसिया, जिस तरह से बोरी को सीते हैं ऐसे सी दिया उस। इतनी देर में GOC द आर्मी GOC केम, ही सेड वी कांट शिफ्ट यू बिकॉज द डॉक्टर्स आर सेइंग वी कांट ऑपरेट योर हेड हियर बारामूला, सो यू हैव टू बी शिफ्टेड टू श्रीनगर। पर रात को ROP लगानी पड़ेगी क्योंकि हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता, तो रात को आर्मी की ROP लगा के मुझे श्रीनगर बेस हॉस्पिटल 92 बेस हॉस्पिटल में रात को ऑपरेट किया, एंड ये स्प्लिंटर निकाला आर्मी बेस हॉस्पिटल में। दूसरे दिन
एक मिनट थोड़ा सा रिवाइंड करता है, लेट्स रिवाइंड टू जस्ट बिफोर द एम्बुश। जब एम्बुश की पहली गोली चली, आपकी पहली रिएक्शन क्या थी, क्या चल रहा था आपके दिमाग में?
आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि अटैक होगा, बट आई वॉज टेकन अबैक। जब पहली गोली चली तो आवाज आई, क्योंकि अंदर तो गोली आई नहीं, क्योंकि मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में। मैंने ड्राइवर और ऑपरेटर को बोला ये क्या है, बोला सर हम पर हमला हो गया, and that is the moment I got extra alert, and I उस तरफ रात का कोई साढ़े आठ का टाइम होगा, आठ साढ़े आठ के बीच का टाइम, रात का वक्त था, March 23rd, 1999 की बात है, और हल्की सी बारिश हो रही थी, तो अंधेरा था, तो पता नहीं लग रहा था कहाँ से गोली आ रही है और कौन मार रहा है, बिकॉज वो दोनों तरफ छुपे हुए थे। तो दैट इज इनिशियल रिएक्शन, बाय द टाइम एंड ऑल दिस हैपेंस सो फास्ट, यू नो इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये हो रहा, तो दिस इज हाउ द अटैक स्टार्टेड। एंड मेरा जो रियर एस्कॉर्ट था उसमें CRP थी। सीआरपी का हेड कांस्टेबल जो है वो नॉन बीपी जिप्सी थी, उसको हेड कांस्टेबल को यहां गोलियां पेट में ब्रस्ट आया और ही इनफैक्ट उसके अंतड़ियां बाहर आ गई यानी डाइड बिफोर वी कुड इवन रेस्क्यू हिम। तो देन ये सारा हुआ, इतनी देर में मेरी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप आ गया, एसपी आ गया एंड देन द ऑपरेशन वाज लॉन्च टू गेट दिस टेरर। लेकिन व्हेन आई आस्क्ड व्हेन यू नो व्हेन आई अगेन केम बैक आफ्टर टू मंथ्स सर्जरी के बाद आई आस्क्ड सीआरपी बॉयज यू हैड एलएमजी व्हाई डिड यू नॉट फायर बैक। तो दैट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। दे सेड सर हमारे पास हमने जो मैगजीन था वो चलाया लेकिन वो यू नो उन दिनों सीआरपी यूज टू कैरी इन बॉक्सेस एमुनिशन एक्स्ट्रा एमुनिशन। तो वो जो इनिशियल फायर कर दिया एक मैगजीन खत्म हो गया, उसके बाद उन्होंने जंप कर दिया और एमुनिशन जिप्सी में रह गया। सो दे कुड नॉट टेक ऑन दिस टेररिस्ट।
जब हाथ पे गोली लगी थी यू रियलाइज्ड यू वर इंजर्ड?
I realized because blood ही blood हो गया, but spur of the moment में गरम, उस वक्त तकलीफ नहीं होती, तकलीफ बाद में होती है। उस वक्त तो गरम गरम injury थी, तो pain तो शुरू में हुई, but बाद में then you feel the pain and
exactly क्या हुआ था?
ये पूरा हाथ कट गया, it is reconstructed।
कहाँ? wrist से?
यहाँ से, ये उड़ गया ना, ये ब्लड, ये जो मास है ये फिर जब मेरी दिल्ली में सर्जरी हुई वो उसको इधर चेस्ट में लगाया और यहां से 2-3 महीने रहा ये हाथ और इधर चेस्ट से जो फ्लैश है वो इसमें आया और फिर इसको काट के इसमें फ्लैश लाया और इसको पिन पे होल्ड किया।
आपका ट्रांसप्लांट हुआ है बेसिकली?
हाँ,
फिंगर्स का।
फिंगर्स। तो दिस इज हाउ एक डॉक्टर सुरेश गुप्ता होते थे, मोस्ट फेमस प्लास्टिक सर्जन ऑफ दिल्ली, बट आई डोंट थिंक ही वुड बी अलाइव नाउ। उन्होंने ये मेरा ट्रीटमेंट किया।
अभी प्रॉब्लम होते हैं आपको?
नहीं, मैंने पूछा था आप सीधा क्यों नहीं रखा उंगली, तो उसने कहा कि जब आप मुट्ठी बंद करोगे तो ये उंगली ऐसे रहेगी, इसलिए उन्होंने ऐसे बनाई है इस तरह से। तो दैट इज वाई आई थिंक ही वॉज वेरी very professional, so this is a wonderful job he's done, so I am able to do my job
and you've inspired a generation.
Oh yes.
But I also definitely thoda aur janna chahunga sir iske bare, if you don't mind.
Yes.
I know it's not a very comfortable topic, but main just perspective janne ke liye ye sab puch raha hu kyunki maine kafi sare faujiyon se baat kari hai show par, unhone kaha ki during combat aapko pata nahi chalta कि गोली लगी है, बिकॉज एड्रेनलिन इतने रश पे होता
yes.
है कि आप पूरे एक्शन मोड में चले जाते हो, बट दर्द फील हुआ?
दर्द बाद में फील,
तब
नहीं, उसको पता भी नहीं चला
एज वो 10 किलोमीटर के स्ट्रेच में एज यू आर ड्राइविंग, तब पता चला।
तब पता चला।
तो उस मोड में सिर्फ गर्मी?
हाँ, उस मोड में गर्मी होती, उस वक्त सर्वाइवल मोड में होता ना आदमी, I have to get out and I have to fight back. वो जो adrenaline screen होती है, तो उस वक्त तो ध्यान, जैसे मैंने कहा मेरी thoughts 3 जगह गई, तो to my family, to Lord Krishna and the teaching I had, learning I had in National Police Academy, Hyderabad.
वो splinter के बारे में बात करना चाहूँगा? Were you aware? वहां भी कुछ?
यस, आई वॉज टेकन टू 92 बेस हॉस्पिटल, आई वॉज अवेयर, इनफैक्ट लॉट ऑफ ब्लीडिंग हैपन। तो बाद में एक सीनियर ऑफिसर ने कार को एग्जामिन किया, उन्होंने कहा हंड्रेड्स ऑफ गोलियां लगी थी, क्योंकि मैं तो इंजर्ड था हॉस्पिटल में, और उन्होंने कहा कि बहुत सारा ब्लड था गाड़ी में, ऐसे लगता था जैसे बकरा काटा हुआ, तो इतना ब्लड था। तो नेचुरली लॉट ऑफ ब्लीडिंग हैपन फ्रॉम हियर ड्राइवर का भी। तो vehicle was fully soaked in blood.
इस incident के बाद कुछ psychological effect रहा ambush का आप पे?
No, in fact I was taken to Delhi by my family, और बड़ी दिल्ली में धक्के खाने पड़े, मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, वहाँ everyone is after money. We went to a doctor, पता चला वो appointment ही नहीं, वहाँ बहुत सारी waiting थी। अब I was a emergency case आई सेड इस तरह से मैं डीआईजी रेंज हूँ, कश्मीर से आया हूँ, इंजरी है, आप मुझे जरा एक बार चेक कर लेंगे. ही सेड कल आइए. नाउ इन सच ए केस आप कैन यू वेट फॉर कल. तो फिर खैर डॉक्टर सुरेश गुप्ता जो अब नहीं होंगे मेरे ख्याल, उनके पास गए तो उन्होंने, बट देयर वाज नो सिस्टम. तो अगर एक रेंज डीआईजी के साथ ऐसा होता है, कांस्टेबल जख्मी आए दिन होते हैं, पुलिस के, फौज के, सीआरपी के, तो आई डोंट नो. अब ओवर द इयर्स अब सिस्टम बन गया है, लेकिन उस वक्त आई वंडर उनकी क्या हालत होती होगी अगर मेरे जैसे ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर के साथ ऐसा होता है. इनफैक्ट ट्रेजेडी ये है कि जो एंटी नेशनल आदमी सैयद अली शाह गिलानी, हुर्रियत का चीफ, उसको स्टेट प्लेन दिया जाता था, स्पेशल प्लेन. व्हेन ही हैड ए कैंसर उसको पटना से मुंबई लिया गया स्टेट प्लेन में, उसके लिए गेस्ट हाउस खुलते थे. और एक पुलिस का या किसी भी फोर्स का जवान या ऑफिसर की ये हालत है, तो व्हाट ए ट्रेजेडी कि हमारे सिस्टम में कमियां तो हैं, लेकिन नहीं, अब बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई. और वो खासकर ओवर द इयर्स पिछले 8-10-15 सालों में बहुत फर्क, 10 सालों में बहुत फर्क आ गया. देयर इज अ कंसर्न टू लुक आफ्टर द पुलिसमैन. पुलिस, मैं बताऊंगा, जो हमारा जवान शहीद होता था उसको 20-25 लाख रुपया एक्स ग्रेशिया उसकी फैमिली को मिलता था. टुडे इट हैज रिजन अप टू 1 crore. और ये पिछले 8-10 सालों में हुआ. पहले इतनी बुरी हालत थी, अब आप बताइए एक आदमी जो देश के लिए शहीद हो गया उसको 20 लाख में उसकी फैमिली का क्या बच्चा उसका करेगा और क्या गुजारा होगा. टुडे गवर्नमेंट इंश्योर्स दैट हिज सन आर चाइल्ड आर वाइफ गेट्स जो ए गवर्नमेंट जॉब प्लस 1 crore इन मनी. तो आप बंदा तो बाहर वापस नहीं ला सकते, एटलीस्ट सम फाइनेंशियल हेल्प एंड सम जॉब टू द फैमिली, एटलीस्ट वो अपनी सब्सटेंस कर सके. तो ये एक अच्छा कदम गवर्नमेंट ने लिया है. यू नो J&K पुलिस की इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए. बहुत सारे मुझे लगता है कंट्री में नहीं जानते. देयर इज लॉट ऑफ नेगेटिविटी स्प्रेड अबाउट J&K पुलिस, लेकिन आपको मालूम है कि 1700 लोगों ने जान दी है. 3 wars में आर्मी के इतने लोग नहीं मरे, इतने शहीद नहीं हुए. 1700 J&K पुलिस के जवान, SPO और ऑफिसर्स शहीद हुए, जिसमें सीनियर ऑफिसर्स भी हैं. एक DIG रैंक का, SSP रैंक के बहुत सारे हैं, DSP रैंक के बहुत सारे हैं, और 6 DGP रैंक के ऑफिसर्स जख्मी हुए हैं. सो इट्स ऑफिसर लेड फोर्स. आई डोंट थिंक एनीवेयर इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया, कि स्टेट पुलिस की इतनी बड़ी कुर्बानी है इस देश को डिफेंड करने के लिए, इस देश कश्मीर को साथ रखने के लिए. ये J&K पुलिस की कंट्रीब्यूशन.
600 से ज्यादा पॉडकास्ट कर लिए, पर जितनी सिक्योरिटी आपके साथ आई है मैंने ऐसी सिक्योरिटी कभी देखी नहीं है. तो हम मुंबई में बैठे हैं, पर इसका लॉजिक क्या है? लाइक व्हाट इज द अंडरलाइन लॉजिक? क्या अब भी आप पर अटैक्स हो सकते हैं? लाइक इज देयर डेंजर सराउंडिंग योर फिजिकल प्रेजेंस?
हो सकता
मुंबई में भी.
इट इज पॉसिबल इफ जनरल वैद्या कुड बी अटैक्ड. यू नो ही वाज अटैक्ड हियर. एनीवन कैन बी अटैक्ड विद neighboring country like Pakistan. You have people, you have sleeper cells operating. Abhi aapne kuch din pehle ISIS module mere khayal aapne pakda Bangalore mein, aapke Mumbai mein kuch ladke pakde gaye. So anywhere in India on the directions of the deep state of Pakistan, anybody can be attacked. So I think that is required.
मैं ऑनेस्टली थोड़ा ब्लैंक्ड आउट हूँ इस कॉन्वर्सेशन के हैवीनेस की वजह से, इसलिए आई एम टेकिंग अ लिटिल टाइम टू कैप्चर माय थॉट्स. कितने सारे मिलिटेंट्स के साथ या टेररिस्ट के साथ आपकी बातें हो चुकी है ओवर द इयर्स? यू मस्ट हैव मेट इजिली मोर देन 100.
मोर देन 100.
उन सारों में कॉमन चीज क्या होती है साइकोलॉजिकली? ब्रेन वॉश्ड होता है.
ब्रेन,
करेक्ट,
बिल्कुल.
उसके अलावा आपने ईविल के बारे में क्या जानना है, क्योंकि शायद वो टेररिस्ट के पर्सपेक्टिव से वो ईविल नहीं है.
देखो ऐसा है, वो इंसान नहीं रहता. एवरीबॉडी इज बॉर्न एज अ ह्यूमन बीइंग.
जी,
लेकिन इट इज द आइडियोलॉजी विच एक्चुअली मेक्स यू
अ डीमन.
डीमन कंस डीमन बना बिकॉज ही हेल्ड अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी.
जी,
रावण डीमन बना बना इतना बड़ा ज्ञानी था, डीमन बना बिकॉज ऑफ इट. इसी तरह बहुत सारे आप आईसिस के आपने वीडियोस देखे होंगे, किस तरह से 60-60 लोगों को गला काटा जाता है. आपने अभी हमास का वो अटैक देखा, इजराइल में देखा, किस तरह से छोटे बच्चे को तवे में जला दिया. यही आइडियोलॉजी थी. बम ब्लास्ट, द काइंड ऑफ अटैक दिस सिटी सॉ इन मुंबई, आई थिंक इट वॉज समथिंग लाइक वॉट हमास डिड इन इजराइल. मुंबई अटैक वॉज टेरिबल. आई हैड सीन इट ऑन द व्हेन इट हैपेंड. सो दिस इज वॉट व्हेन व्हेन कसाब वॉज इंटरव्यूड, यू लिसन टू दैट इंटरव्यू, उसको क्या क्या बताया जाता था इंडिया के बारे में, इसके बारे में, भारत की के बारे में, इतना कुछ नेगेटिविटी बताई जो एक्चुअली फैक्ट नहीं होता है. तो आप इस ब्रेन वॉशिंग से इंसान को आप बहुत जानवर जैसा बना सकते हो. तो दिस इज व्हाट एक्चुअली, तो यू नीड टू एंगेज विद हिम. और बहुत सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता चेंज भी होते हैं, लेकिन देर आर मैनी हु आर वेरी डिफिकल्ट. लाइक आई विल टेल यू अजहर मसूद.
जी,
आई हैड उसका बाद में बताएंगे डिटेल में, लेकिन अजहर मसूद को जब मैं मिला कोट बलबाल जेल जम्मू में, व्हाट ए रेडिकल मैन ही.
ये थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दीजिए सर, मतलब उनकी बैक स्टोरी क्या
है. अजहर मसूद इज अबीबी है, ही इज ए चीफ ऑफ द जैश ए मोहम्मद. आपको शायद याद होगा IC 814 फ्लाइट थी जिसको काठमांडू से यहाँ आना था दिल्ली, उसको हाईजैक किया गया.
जी.
और किस तरह से उसको कंधार, और पहले वो अमृतसर में लैंड की, अमृतसर में उसको जिस तरह से करना चाहिए था, रोकना चाहिए था, रनवे को ही ब्लॉक कर देना चाहिए था, लेकिन यू नो आर सिस्टम्स, वो जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी थी उसने टाइम लिया इतनी देर में वो यहां से, अदरवाइज वो जा ही नहीं सकता था अमृतसर से अगर इमीडिएटली रनवे ही ब्लॉक कर क्या कर लेते. तो उसको जब कंधार लिया गया तो यहाँ बहुत बवाल पूरे इंडिया में, जो लोग उस फ्लाइट में थे उनके रिश्तेदारों ने पूरे भारत में बहुत, ऑब्वियसली बिकॉज उनके रिलेटिव्स वहां थे, तो बड़ा क्राइसिस. गवर्नमेंट केम अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर. तो अल्टीमेटली पहले तो उन्होंने बहुत डिमांड्स की थी, देन इट वाज एग्रीड कि 3-4 लोगों को छोड़ा जाएगा, उसमें वन ऑफ देम वाज अजहर मसूद. एंड अजहर मसूद वाज लॉज्ड इन हाई सिक्योरिटी प्रिजन कोट बलवाल जेल विच इज इन जम्मू. सो उसके लिए स्पेशल प्लेन दिल्ली से आया, विच वॉज उसमें जो एक सीनियर दिल्ली के फंक्शनरी थे, ही केम हु वाज अ चीफ ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी. एंड मेरी ड्यूटी लगाई गई कि अजहर मसूद को आपने सेफली वहां से लेकर इनको हैंडओवर करना है. दैट वाज मोस्ट पेनफुल बिकॉज आई न्यू इस आदमी को छोड़ने का मतलब है ये सैकड़ों नहीं हजारों को मारेगा. आई केप्ट प्लीडिंग विद द then police chief, I said don't do this. He said I am under orders, I can't help it.
उन्हें पहले इस incident से पहले पकड़ा कैसे गया था?
ऐसा आदमी तो पकड़ा नहीं जाता ना. ऐसा आदमी पकड़ा गया, it was a chance arrest by BSF. बहुत अच्छे. और कितने लोगों की कुर्बानी लग के ऐसे बंदे को पकड़ा गया, बिकॉज वो इतना डेंजरस आदमी है, अभी भी है। और उसी ने पार्लियामेंट अटैक ऑर्केस्ट्रेट किया, J&K असेंबली का अटैक आके, बहुत सारे, मैं कितने नाम लूं, और सैकड़ों लोगों को मारा उसने।
उसे तुरंत मारा क्यों नहीं गया था, लॉजिक क्या था?
मार देना ही चाहिए ऐसे आदमी को, जिंदा पकड़ना तो सुइसाइड के बराबर है। और वही हुआ जो जिसका अंदेशा था, जो हम कह रहे थे कि इसको मत छोड़िए, और लेकिन अब उस वक्त गवर्नमेंट की मजबूरी थी। आई थिंक दैट वाज द, मैं कहूंगा दैट जो कंदार हाईजैकिंग का वक्त था, वो कंट्री का लोएस्ट ऐप था। इट वाज मोमेंट ऑफ एम्बैरेसमेंट फॉर द होल कंट्री। एंड जिस तरह से उस क्राइसिस को फेस किया गया, वो कंट्री के लिए बहुत शर्मनाक था।
पर एक्चुअली मारा क्यों नहीं गया सर, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से?
आई डोंट नो, लेफ्ट टू मी एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, ऐसे आदमी को जिंदा नहीं पकड़ना।
क्वाइट ऑब्वियसली, मतलब आई थिंक आज पॉडकास्ट की वजह से लोग, आप लोगों की साइकोलॉजी एकदम अच्छे से समझते हैं, पर लोग स्मार्ट हो चुके हैं, लोग ये भी समझते हैं कि जियोपॉलिटिकल एंगल्स होते हैं, जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, जिनकी वजह से पॉलिटिशियंस पर प्रेशर आता है, और फिर पॉलिटिशियंस आप जैसे वॉरियर्स पर प्रेशर डालते हैं। इफ इट वॉज लेफ्ट टू यू गाइज, हर किसी को पता है कि क्या होता, पर सारे डिसीजन आप लोगों के हाथों में नहीं होते।
नहीं होते।
डू यू फील एंग्री बिकॉज ऑफ दैट?
यस, इट इज मेरी जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट काम था, टू कैरी हिम and take him to, hand over him to, in the technical airport to RAW chief that time.
उनके साथ बैठे थे गाड़ी में, क्या बात हुई?
यही कहा मैंने, this is going to be very costly decision.
गालियां दी आपने उन्हें?
नज़र मसूद को तो क्या नहीं कहा? He said, मैं वो तस्वीर पढ़ता था, तो मैंने कहा इसको कि इसको मंकी कैप होती है ना, ताकि इसका मुंह ढक दिया जाए, बिकॉज बाहर मीडिया वेट कर रहा था। सो व्हेन आई केम आउट इन अ जिप्सी, और उसको मुंह ढका हुआ था, तो बिकॉज आई वाज अंडर ऑर्डर कि इसका पत वो नहीं आना चाहिए। तो मीडिया टीम फॉलोड मी होल 10-15 किलोमीटर्स टिल द टेक्निकल एयरपोर्ट। सो He was resisting कि मेरा मुंह ढकना नहीं,
उसे मुंह दिखाना था,
बहुत चाहता था। He didn't, अपने आप को बहुत
चीज,
बड़ी चीज, मतोप मानता था ना। I said, मैंने उसको गाली दी, मैं तेरी ऐसी की तैसी। I told my constables, cover him up. So, उसके हाथ बांधे, इधर मंकी कैप डाली और उसको गाड़ी में मुर्गे की तरह रख।
So, मोहम्मद यूसुफ पारे या कुका पारे, इनके बारे में जानना, इख्वान, हमने यही कहा इख्वानीस, ये पूरी बैक स्टोरी दे दीजिए, थे कौन, बिकॉज अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, ये एक बहुत पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन है ऑफ लोकल कश्मीरी पीपल, जो बहुत ज्यादा पेट्रियोटिक उस जमाने में थे जब कश्मीर काफी ज्यादा डिवाइडेड था। सो इनकी स्टोरी क्या है?
देखो, मोहम्मद यूसुफ परे, पॉपुलरली नोन एज कुका परे, बेसिकली ये टेररिस्ट पहले था, एक्स टेररिस्ट था, देन ही सरेंडर्ड एंड बिकेम ए प्रो फोर्सेस, या प्रो यू कैन से नेशनलिस्ट सरेंडरी। इनको इख्वानी भी बोला जाता था लोकल लैंग्वेज में, या बहुत सारे लोग सरेंडरी बोलते थे। ये वो लोग थे जिन्होंने शुरू शुरू में टेररिस्ट होने की वजह से इनको पूरी जानकारी थी, टेररिस्ट कैसे हाइड करते हैं, कहाँ करते हैं, मूवमेंट कैसे होती है, उनके एक्शंस कैसे होते हैं, नेचुरली वो जो उनके सारे भेद जानते थे। तो दे स्टार्टेड वर्किंग विद द आर्मी एंड पुलिस, STF, उन दिनों स्पेशल टास्क फोर्स होती थी J&K पुलिस की, उनके साथ काम करना शुरू किया। अल्टीमेटली दे लेड J&K पुलिस एंड द आर्मी ह्यूज सक्सेस इन न्यूट्रलाइजिंग Hizbul Mujahideen to a very large extent, which was the largest terrorist organization in JNK at that time. And baad mein Cook Pare ne apni awami national party bhi banayi, us pe election ladi. He became an elected MLA. So of the JNK assembly. Kuch, you know, ek vicious campaign aise logon ke khilaaf, wahi wo jo main kaha na ecosystem jo Jammu Kashmir mein chalta tha, wo aise logon ko jo pro India the, pro nationalist the, pro forces the, unke khilaaf ek vicious campaign chalate the. Theek hai, kuch jatiyan bhi hui hongi, main nahi kehta. STF agar banaya JNK police ne, to STF special task force thi, wo jab terrorism se jab joojte ho aap unke saath, to aap se kahi bar excesses bhi ho jati hain, galtiyan bhi ho jati hain, koi bhi kaam bilkul perfect nahi hota hai, to isme galt element bhi aa jate hain, kuch log jaise inka contribution dekhne ke bajaye inme kuch ऐसे एलिमेंट घुस गए जो टिम्बर स्मगलिंग कर लेगा, जो लोगों से चेकिंग के दौरान पैसे ले लेगा. नाउ जस्ट लाइक पुलिस, पुलिस सारी पुलिस उसकी वजह से, अगर मुंबई में कोई पुलिस का कांस्टेबल पैसे ले लेता है या दो थप्पड़ मार देता है, तो उसका मतलब नहीं कि पूरी मुंबई पुलिस बैड है ना. तो सिमिलरली जेएनके पुलिस में भी जो एसटीएफ बनाया गया, जो लड़ रहे थे टेररिज्म के साथ, उसमें कुछ अगर गलतियां भी करते तो आइडेंटिफाई देम एंड उनके खिलाफ कार्रवाई. एक विशियस कंपेन चली कि इकवानीज जो हैं ये सारे गलत काम करते हैं, टिम्बर स्मगलिंग करते हैं, मतलब वेरियस एलिगेशंस करप्शंस की. तो अल्टीमेटली इन लोगों को इतना बदनाम कर दिया और नेट रिजल्ट वाज व्हाट हैपेंड. द इंडियन स्टेट, मैं इसको कहूंगा पूरी इंडियन स्टेट, उसमें हम सब आते हैं, उसमें आर्मी भी है, पुलिस भी है, सिविल मजिस्ट्रेसी भी है, एवरीवन इज देयर. वी कुड नॉट प्रोटेक्ट हिम, समबडी हु फॉट फॉर यू, हु फॉट फॉर योर कंट्री, उसको बजाय हीरो बनाने के हमने बुरहान वानी जैसे उनको हीरो बनाया. सो दैट इज व्हाट दैट दिस इज वेयर यू मिसलेड योर यूथ. तो इसको मरवा दिया. और इसी तरह जावेद शाह था, उसको सुसाइड बम में मरवा दिया, इसको टेररिस्टों ने मार दिया, उसको भी टेररिस्ट मार, जबकि इनको बचाना चाहिए था, ये मेरा मानना है. चाहे कोई भी सिस्टम से आप इसको इनको प्रोटेक्ट करते, तो इंडियन स्टेट एज सच फेल्ड, दिस इज माय फर्म कन्विक्शन. जबकि इंडियन स्टेट की जिम्मेदारी थी कि जो आपके लिए लड़ रहा था उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए.
एक रिवेंज असैसिनेशन थी.
हाँ.
From the terrorist end.
Terrorist.
जो आपने कहा suicide bombings के बारे में कि कारगिल वॉर के बाद बहुत सारे terrorists enter हो गए Indian territory में, तो आपके आस पास in your physical reality कभी एक suicide bombing हुई है?
हाँ,
हुई है
बहुत बार.
बहुत बार,
बहुत बार, because ये पूरे जम्मू कश्मीर में हो रही थी उस वक्त, और मेरे विंटेज के जितने भी ऑफिसर्स हैं उन सब ने देखा है. उन पर अटैक हुए हैं, उन पर इस तरह के सुसाइड बॉम्बिंग में जो मेरे ऊपर अटैक हुआ, ये फेनोमेना उसी वक्त 99 में स्टार्ट हुआ था. इनफैक्ट आई रिमेम्बर एक डीआईजी बीएसएफ थे बांडीपुर में, बांडीपुर मेरी रेंज में आता था, बारामूला कुपवाड़ा रेंज का एक डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर है, तो जहां का एकुका परे था, यहां इसका एरिया था ऑपरेट करने, वहां बीएसएफ का एक हेडक्वार्टर है जहां डीआईजी बीएसएफ वो सीनियर मोस्ट ऑफिसर, उस पर फिदाई अटैक हुआ एंड ही गॉट किल्ड. उसके बाद मेरे ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद ब्रिगेडियर एक आर्मी के और एक कर्नल को आईडी में उड़ाया. तो ये सारा उस वक्त हुआ. अब बाद में बहुत सारे हमारे पुलिस ऑफिसेस में, बहुत सारी बटालियंस में, सीआरपी बीएसएफ आर्मी एवरीवेयर, इवन आर्मी कोर हेडक्वार्टर में अटैक हुआ जो बदामी बाग का कोर हेडक्वार्टर है, जम्मू में जो आर्मी का कोर है वहां अटैक हुआ, 16 कोर looks after Jammu province, 15 crore looks after Kashmir province. Unke headquarters mein attack hua, army ke headquarters. So no place was actually isse bachi hui koi aisi jagah nahi thi.
Suicide bombers apne body par bomb laga ke aate the.
They come with the intention to get killed and kill as many people as possible. They come with the intention, वो drug लेके आते हैं और अपने आप को मारना है, मरना है और मार के जाना है कितने लोग. वो जो भूत सवार होता है ना कि मैंने जिहाद के नाम पर आप जितना डैमेज मैं कर सकता हूँ. जैसे उड़ी अटैक हुआ, उड़ी में आई थिंक 3 or 4 टेररिस्ट थे. They entered Uri Brigade headquarters. This is somewhere in September 2016. I was special DGC JNK Law and Order. 4 terrorists early in the hours crossed from the LOC and sub-brigade Udi is on the border itself. So Udi Brigade headquarters mein enter kiye, Santri ko mara. उसके बाद अंदर घुस गए, फिर मैस शायद ऑफिसर्स मैस में चले गए और आग लगा दी कुछ बहुत. तो दे वर एबल टू डैमेज आई थिंक 19 कैजुअलिटीज. नाउ 4 टेररिस्ट एंटर आर इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग एंड डैमेज 19 लोगों को, फौजियों को शहीद कर दिया. नाउ दिस इज व्हाट पाकिस्तान वांटेड ना टुडे. मैं कहता हूँ ना कर्मा बहुत क्या चीज, आप इस किसी को स्पेयर नहीं करता. जो भगवान का नियम है, मैं जैसे कर्म करूंगा वो फेस करना है. टुडे पाकिस्तान आर्मी इज फेसिंग द सेम थिंग टुडे,
क्योंकि ईरान से अटैक हो रहे हैं.
अरे ईरान का क्या, उनका अपना क्रिएट किया हुआ TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान और BLA आए दिन उन पर अटैक करता है और सुइसाइडल अटैक. सो व्हाट पाकिस्तान डीप स्टेट डिड विद जम्मू कश्मीर एंड रेस्ट ऑफ इंडिया, टुडे दे आर फेसिंग, उनकी वही हालत हो रही है आज. उनकी जो हालत है पाकिस्तान आर्मी एंड द बैक फुट, उनकी तबाही हो रही है. तो मैं इनफैक्ट एक दो बार ट्वीट किया कि कर्मा किसी को नहीं छोड़ता. आप जैसा, मैं आपके लिए गड्ढा खोदूंगा, मेरे लिए खुदा ही खुदा. तो दिस आपको इधर ही हिसाब देना है एंड दैट इज व्हाट पाकिस्तान इज फेसिंग टुडे, ये मेरा मानना है.
कोई ऐसी सिचुएशंस थी जो आपके लिए साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थी ऑन अ पर्सनल लेवल?
मैं एक सिचुएशन बताता हूँ. मैं SP बड़गाम था 1990 में, आई थिंक मंथ मुझे अब याद नहीं. तो उन दिनों डिस्ट्रिक्ट में एक SP होता था, एक DSP हेडक्वार्टर और एक DSP पुलिस लाइंस, तीन ही गस्टेड ऑफिसर्स होते थे. तो एक दिन आई वाज सपोज टू गो टू विजिट सम एरिया ऑफ बड़गाम नोन एज आरीजाल. एक्चुअली वहां से फ्राइडे को एक डेपुटेशन आता है, एंड दैट डेपुटेशन मीट्स मी, दे से कि सर आपने हमको खुदा के हवाले कर दिया है, ना आप आते हैं ना डिप्टी कमिश्नर आता है, तो हमें टेररिस्टों के हवाले कर दिया, तो आप हमारे इलाके में तो आइए. आई लाइक ए यंग SP, आई सेड ओके वी विल कम ऑन मंडे, नॉट रियलाइजिंग दैट वाज अ ट्रैप. तो मंडे को आई, फ्राइडे को आफ्टर दिस डेपुटेशन आई रैंग अप डिप्टी कमिश्नर वाज अ कुलीग ऑफ माइन. आई सेड उनका नाम क्या था मैं भूल गया. तो उनको मैंने कहा कि DC साहब ये डेपुटेशन आया, तो ये लोग कह रहे हैं आप लोग आते नहीं हैं, तो हमें हमारी दिक्कतें सुनने के लिए आप किसी दिन तो आइए. तो मैंने कहा मंडे को चलें, कहते ठीक है चलते हैं. तो मैंने इनको कहा जाइए आप DC साहब को मिल लीजिए, तो हम मंडे को आएंगे. दैट वॉज अ ट्रैप. तो आई वॉज सपोज टू गो, तो मैंने मंडे को 10 बजे तैयार तूर होके मैं जैसे ही जिप्सी में बैठने लगा तो मुझे वायरलेस, उन दिनों मैंने कहा ना ये मोबाइल नहीं होते तो वायरलेस चलती, तो मुझे वायरलेस पे मैसेज आया रेंज DIG एक अजहर आलम होते थे, ही इज नो मोर नाउ इन लाइफ, ही वाज फ्रॉम IPS ऑफिसर फ्रॉम पंजाब कार्डर, ही वाज DIG कश्मीर. ही गेव मी ए मैसेज दैट प्लीज रीच पट्टन विच इज इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट, आई वॉज SP बड़गाम, आप प्लीज रिपोर्ट एट पट्टन for an urgent operational meeting at CRPF camp, so and so. So, मैंने मैसेज दिया डीसी को कि मैं नहीं जा रहा, मुझे डीआईजी इज आस्किंग टू गो टू पटन, तो आई विल नॉट बी एबल टू कम, तो यू ऑल्सो डोंट गो. तो डीसी भी नहीं गया और मैं भी नहीं गया, मैं चला गया पटन. हमारे पीछे से डीएसपी हेडक्वार्टर, डीएसपी डीआर एंड एसएचओ, दे थॉट के एसएसपी साहब नहीं जा पाए, हम चले जाते हैं. वो गए थिंकिंग दैट मैं और डीसी हैं. ओ दैट वॉज अटैक प्लान्ड ऑन डीसी एंड एसपी, हम दोनों पर. लेकिन हम चूंकि गए नहीं, उन्होंने सोचा. और वो जेकेएलएफ उन दिनों 90 की बात कर रहा हूं, उन दिनों मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जेकेएलएफ थी, तो उनका एम्बुश था. तो वो 10-15 लोगों ने अटैक कर दिया, वो जो दो गाड़ियां जा रही थी, और उसमें डीएसपी हेडक्वार्टर डाइड ऑन स्पॉट. उसको यहां डीएसपी डीआर, डीएसपी पुलिस लाइंस, उसको यहां ब्रस्ट आया, ही डाइड. एसएचओ को भी गोली सर में लगी, ही ऑल्सो डाइड. जो डीएसपी हेडक्वार्टर था उसकी टांगों पे गोलियां लगी एंड ही गॉट इंजर्ड. सो मैं जब ये मेरे मुझे जब मैसेज आता है तो आई रश्ड. तो दो अफसर तो मर चुके थे, तीसरा को मैंने उठा के हॉस्पिटल लिया ना. मैंने इतनी स्पीड से गाड़ी चलाई कि इसको बचाना है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते वो उसका ब्लीडिंग काफी हो गया, बट बच गया वो. उसको डॉक्टर आई थिंक दैट इज द फास्टेस्ट व्हीकल मैंने ड्राइव किया है उसको बचाने के, तो डॉक्टरों ने उसको बचा लिया. तो दैट वॉज वेरी बैड डे फॉर मी कि मेरा डिस्ट्रिक्ट ही खाली हो गया, आई वॉज लेफ्ट अलोन. सो इमोशनली बहुत डिस्टर्बिंग. और एक और इंसिडेंट हुआ, मेरा एक मेरे साथ एक पीएसओ होता था, उसको किडनैप किया टेररिस्टों ने, बड़गाम की बात है 90s में. और उसका सारा जिस्म जो है टेररिस्टों ने प्रेस से जला दिया, गरम प्रेस, आस्किंग अबाउट मी, पूरी बॉडी. उसको 4-5 महीने लगे रिकवर करने, उसको मार के फेंक गए थे इंटरोगेट करते वक्त, उसको गरम प्रेस करते थे और पूरी बॉडी को लगाते थे, इतना टॉर्चर. सो दीज 2-3 सच इंसिडेंट्स वर वेरी डिस्टर्बिंग.
इज ही अलाइव?
हां ही इज अलाइव.
मुझे बात होती
है, होती मिल कैसे मिलता है, बीच बीच में मिलता है. ही इज स्टिल अलाइव एंड ही इज कम आउट ऑफ इट, बट दैट टाइम इट वाज यंग बॉय. बस टॉर्चर्ड सो मच. सो जो मैं कह रहा हूं कि कश्मीर के लोगों, सी हियर आई वांट टू ऐड व्हाट हैपेंस, इंडियन आर्मी एंड सीआरपी और बीएसएफ 2 साल की ड्यूटी पे जाते हैं, 3 साल की ड्यूटी पे जाते हैं. कंट्रीब्यूशन ऑफ जे एंड के पुलिस वी शुड नॉट फॉरगेट, एंड आई वांट योर व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड दिस. जे एंड के पुलिस का सिपाही 35 साल के लिए वही है, उसकी बीवी वही बाजार में सामान लाती है, सब्जी लाती है, उसका बच्चा उसी गांव के स्कूल में जाता है जहां टेररिस्ट रहते हैं. आप इमेजिन करो उसका कितना मुश्किल काम है, और उसके लिए 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 35 साल वहां रहे. सीआरपी वाले को मालूम है मैं 3 साल के बाद निकल जाऊंगा, आर्मी वाले को मालूम है मैं 3 साल के बाद निकल जाऊंगा, लेकिन जे एंड के पुलिस वाले का कोई वो नहीं. ही हैज टू लिव देयर इन दैट सोसाइटी जहां बाकी सोसाइटी उसको बाइकॉट करती है. एक जो मैं बता रहा था, कदीर शाह जो डीएसपी पुलिस लाइन था, जो मर गया, शहीद हो गया इस अटैक में जो हमारे ऊपर प्लान था, उसको दफनाने के लिए बारामूला का रहने वाला था, वहां उन्होंने उसके जो बुरियल ग्राउंड था दफनाने नहीं दिया उसको. कैन यू इमेजिन, सोशली ऑर्केस्ट्रेट बाइकॉट करते थे. तो ऐसी सोसाइटी उस वक्त बन गई थी. तो ऐसी सिचुएशन में जे एंड के पुलिस का जवान काम करता है, बहुत बड़ी बात. आज मैंने 90 में देखा है कि लाल चौक में एक सिपाही को कोई आके गोली मारता है, ही ट्रैफिक की ड्यूटी कर रहा है, वो समबडी टेररिस्ट कम एंड शूट हिम. उसकी बॉडी हम उठाते हैं, खून साफ करते हैं, वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है, पूरी सड़क में ब्लड ब्लड होता है, वो साफ करते हैं. दूसरा कांस्टेबल वहीं खड़ा हो जाता है, नोइंग दैट ही कैन आल्सो बी टारगेटेड. अब इमेजिन करें कितनी सिचुएशन. और मैं समझता हूं असली हीरो वो है, वो जो कांस्टेबल है ही इज एक्चुअली सुपर कॉप, नॉट मी, नॉट अदर सीनियर ऑफिसर्स. सुपर कॉप वो है जो लास्ट सिपाही है, जो वहां लड़ रहा है, जो वहां खड़ा होता है. और ऐसी सिचुएशन
आप पुलिस ऑफिसर बने क्यों?
एक्चुअली लेट मी टेल यू, मेरा एप्टीट्यूड पुलिस के लिए नहीं था. आई वॉज मोर लाइक ए साइंटिफिक तरफ जाना,
इंजीनियरिंग.
मैं बेसिकली वेटनरी सर्जन हूँ, यू नो दैट. मैं रिसर्च में इसमें जाना चाहता था, या प्रोफेसर बनना, ये मेरी वो थी एप्टीट्यूड. बट डेस्टिनी लेके गई, मुझे लगता है डेस्टिनी ले जाती है आपको. आज जो आप पॉडकास्ट कर रहे, आपने 5 साल पहले सोचा, 10 साल पहले सोचा था कि
बिल्कुल
ये हो कैरियर हो? तो मैं, मेरा ये मानना है ना, फर्म बिलीफ इन, कि डेस्टिनी ले जाती है आपको जो उसने कराना होता है. बिकॉज आई बिलीव इन डेस्टिनी एंड बिलीव इन गॉड. पुलिस जो मेरा एप्टीट्यूड ही नहीं था. मैं सिविल सर्विसेज में एक दिन भूत चढ़ा कि मुझे सिविल सर्विस करनी है. मैं जब मद्रास में पढ़ता था, मद्रास वेटनरी कॉलेज में, तो आई स्टार्टेड लाइकिंग कि सिविल सर्विस करते हैं. तो बेसिकली इसका एग्जाम देता रहा, तो आई एंड गॉट इनटू आई इंडियन पुलिस सर्विस, एंड मुझे होम कार्डर मिल गया. आई वाज वेरी हैप्पी एंड जॉइंड जेएनके पुलिस. दिस इज व्हाट डेस्टिनी. और हमारे पांव पड़ते ही कश्मीर में बवाल शुरू हो गया, हालात खराब हो गए.
आपको आपका बचपन याद है?
जी याद है.
शांति होती थी तब?
एकदम
जम्मू में.
अरे बिल्कुल शांति, बिल्कुल शांति.
जैसे अब है?
अभी भी, अभी जम्मू तो बिल्कुल शांत.
वुड यू से दैट 1990s से चीजें शुरू हुई तबाही? जो चीजें कश्मीर फाइल्स में दिखाई है वो एक पूरे जेनरेशन के लिए एक रेफरेंस पॉइंट है कि 1990s में ये हुआ, स्पेशली जो जेंजीज है.
सी, पिक्चर फिल्म की एक लिमिटेशन है टाइम. आपको 2-2.5 घंटे में दिखाना है, 2.5 घंटे में यू कांट शो एवरीथिंग. हुआ तो बहुत कुछ कश्मीर, और आप उस पर बुक्स लिखिए, आप कितना कुछ लिखिए, तो अनएंडिंग है, बहुत कुछ हुआ. फिल्म को आपने 2.5 घंटे में सारा डाल, वो 1-2-4 एपिसोड लेते, इंसिडेंट लेते हैं, उसका एपिसोड बनाते हैं
जी.
तो यू कांट डिपिक्ट एवरीथिंग व्हाट हैपन इन कश्मीर.
मतलब पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है,
बट बहुत हद तक उन्होंने रिसर्च किया है, इंटरव्यूज लिए हैं, और वो ये चीजें, ये इंसिडेंट हुआ है.
तो, जब जब अर्ली 90s का फेज चल रहा था और कश्मीरी पंडित की एग्जोडस हो रही थी, आपके दिमाग में क्या चल रहा था एज अ पुलिस ऑफिसर, और आपके आसपास के जो टीममेट्स थे, मतलब बातचीत क्या होती थी एक दूसरे से?
बातचीत ये होती थी कि ये गलत हो गया, बिकॉज मेरा ये मानना है कि इट वाज ए फेलियर ऑफ द स्टेट, कश्मीरी पंडितों का वहां से निकलना. लेकिन उस वक्त माहौल ऐसा हो गया, उस वक्त आई थिंक दिस वॉज 7th एग्जोडस ऑफ कश्मीरी पंडित. पहला नहीं था, पहले भी हुआ है. सिकंदर, मीर सिकंदर शाह एक रूलर हुआ आई थिंक 13th-14th century में. उसने जब ये सारा कन्वर्ट किया, हालांकि बहुत सारे सूफी सेंट्स का भी कश्मीर में रोल रहा है, लेकिन उसके टाइम पे जबरदस्ती हुई, जजिया लगा, टेंपल्स तोड़े गए, जनेऊज निकाले गए, बहुत सारों को टॉर्चर किया गया और कन्वर्ट किया गया. ये हिस्ट्री में है, मैं नहीं बोल. तो फर्स्ट एग्जोडस तब से स्टार्ट हुआ, दिस वाज 7th एग्जोडस. बट अनफॉर्चुनेटली दिस हैड दी, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि इसी कंट्री में ओरिजिनल रहने वाले कश्मीर के अपने देश से देश निकाला हो गया उनको. तो ये स्टेट को उस वक्त खड़ा होना चाहिए था और ये इंश्योर करना कि नहीं होता. और उस वक्त हालांकि लोगों ने कश्मीर में एक कंपेन चलाई कि ये जगमोहन ने करवाया, ऐसा नहीं है. जगमोहन क्यों करवाता ये? लेकिन उस वक्त जिस तरह का बेसिकली इसको ये पाकिस्तान चाहता था, पाकिस्तान की डीप स्टेट की पॉलिसी थी कि इसको पूरा रेडिकलाइज किया जाए कश्मीर को, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको यहां से पुशबैक, इनफैक्ट उन्होंने मैसेकर भी किया, अगर आपको याद होगा बंधामा मैसेकर कश्मीरी पंडितों का किया गया गांधरबल के इलाके में, शायद सिखों पर अटैक किया, छठी सिंहपुरा अटैक जो सिखों पर प्लान किया गया, लेकिन सिख स्टूड लाइक ए रॉक। कुछ लोगों ने जम्मू में घर बनाए लेकिन उनको भी फोर्स करने की कोशिश की, लेकिन उन दिनों खालिस्तानी मूवमेंट भी चल रही थी, उन्होंने कहा अगर आप हमारे मारोगे तो हम भी आपके मारेंगे। सो तो वो कश्मीर एज ए सोसाइटी को खड़ा होना चाहिए था, वहां के कश्मीरी जो मुस्लिम्स हैं दे डू मिस कश्मीरी पंडित एज टीचर्स, उनके बच्चों को अच्छे पढ़ाने वाले टीचर नहीं, बट फैक्ट रिमेन्स कि गन के डर से साइलेंस रही, और बहुत सारों ने इसको एक्सेप्ट किया, नहीं करना चाहिए था, खड़ा होना चाहिए था, और ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कश्मीर का फेलियर है, और हम सब का एज ए इंडियन स्टेट कि कश्मीरी पंडितों को वहां से जिनोसाइड किया गया, उनकी औरतों के हुए उनको निकाला गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब तक कश्मीरी पंडितों को रीसेटल ना कर दे तब तक मैं समझता हूं इस जंग में पूरी कामयाबी नहीं है, ये मेरा मानना।
ये होगा,
होना चाहिए, अल्टीमेटली वी शुड वर्क टुवर्ड्स दैट। अगर ये नहीं होगा तो ये इंडियन स्टेट का फेलियर है, और इसमें इनको इंसाफ भी दिलाना चाहिए।
Is it easy to move into Kashmir now and stay there?
It is, they are staying in camps. So, lekin jab tak last gun rahegi, they will be targeted because easy target hai. So, we have to work towards that. Jabki aur Muslims ke integration unke saath ho, unke stakes create kiye jaye usme. उनके बच्चों को ये पढ़ाते हैं, अगर पढ़ाते हैं तो उनका स्टेक होगा कि हमारे बच्चों का टीचर नहीं मारा जाना चाहिए। तो मे बी यू आर्म देम, यू मे बी यू ट्रेन देम, मे बी यू कार्व आउट सेपरेट कॉलोनीज फॉर देम। तो ये जरूरी है, इनको जब तक आप कश्मीरी पंडितों को वापस नहीं सेटल करोगे, मैं इसका फाइनल सोल्यूशन नहीं मानता, सिर्फ 370 हटा देना इज नॉट द फाइनल सोल्यूशन।
जब ऐसे
हालांकि 370 हटना बहुत बड़ी बात, दैट इज अ लैंडमार्क व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदीज गवर्नमेंट हैज डन, एंड इट हैज चेंज्ड द सिचुएशन, इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड द सिचुएशन, यू टेक बाय एनी पैरामीटर। अच्छा, द काइंड ऑफ डेवलपमेंट इट इज जे एंड के इज विटनेसिंग, आई लिव देयर टुडे, यू हैव टू एम्स, नो अदर स्टेट इन द कंट्री हैव टू एम्स। Already Prime Minister has inaugurated Jammu Wala Ames. The other is getting ready in Kashmir, Avantipur. IIT, IIM. Medical college is fourth here. Today there are 12 medical colleges. Indian Institute of Mass Communication, Indian Institute of Fashion Technology. So much of educational hub it is becoming. Industry ka paisa, 50,000 crore rupaya. दुबई जैसी कंपनियां यहां, दुबई जैसे जगह से कंपनियां आके इन्वेस्ट कर रही हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी इतनी अच्छी बनाई है, टूरिज्म एज यू सेड इज फ्लोरिशिंग, सो इट इज ट्रांसफॉर्मिंग, नो डाउट अबाउट इट। डेवलपमेंट पुश प्राइम मिनिस्टर का, अच्छा रोड्स, रेलवे, पहली बार रेलवे का कनेक्शन होने वाला है जो पिछले 30 सालों से कंप्लीट नहीं हुआ था, बहुत जल्दी आई थिंक इट इज गेटिंग कनेक्टेड, ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड ए मेजर पोर्शन ऑफ इट, एंड रोड्स का इतना नेटवर्क, टनल्स आ रही हैं, इट इज जे एंड के इज गेटिंग टोटली ट्रांसफॉर्म्ड। बट ये जो सारा कुछ है मैं समझता हूँ तभी कंप्लीट होगा जब कश्मीरी पंडितों को वहां हम सेटल करें।
जब अर्ली 90s में ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे थे जो मूवी में दिखाए गए हैं, और पुलिस को इंटेल मिल जाता था कि ऐसा कुछ हुआ है, तो डिड द पुलिस वांट टू रिएक्ट बट वर यू स्टॉप्ड बाय हायर पावर्स?
नो नो, नो वन स्टॉप्ड अस, बट पुलिस खुद भी इनर्शिया में थी. पुलिस डिड नॉट नो हाउ टू स्टॉप इट. पुलिस डिड नॉट हैव रिसोर्सेज टू फेस ऑनस्लॉट ऑफ पाकिस्तान. जैसे मैंने कहा कोविड वॉर थी और ये जो पाकिस्तान का डिजाइन था सर्जिकल सॉरी एथनिकल क्लींजिंग ऑफ कश्मीर, ऐसा ही प्लान पाकिस्तान का जम्मू डिवीजन के लिए था. मैं उस आपको बताऊंगा कि जम्मू के पहाड़ी इलाकों में भी मिक्स पॉपुलेशन है हिंदू और मुस्लिम्स की. अरेस्ट वाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट, डोडा टुडे हैव बिकम थ्री डिस्ट्रिक्ट नाउ, डोडा किश्तवाड़ एंड रामबन. इस पूरा को पूरा एक डोडा डिस्ट्रिक्ट बोलते थे, हिली रीजन. और इसी तरह रजौरी पुंछ का इलाका जहां आपने देखा होगा पिछले एक साल से बहुत सारे अटैक हुए फौज पर, बहुत सारी आर्मी की कैजुअल. तो इस इलाके में जब मैं एसपी बड़गाम था आता था तो मैं पहाड़ियों को देखता था कि अगर यहाँ टेररिस्ट घुस गए तो क्या होगा. और वही हुआ जो 90s में मैं सोचता था. कई बार होता ना आप जो सोचते वही हो जाता है. और टेररिस्ट आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर से स्पिल ओवर हो गए. तो जो पीर पंचाल रेंज है, जो पहाड़ी जो पहाड़ है बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, इनमें टेररिस्ट आ गए और दे स्टार्टेड लूटिंग पुलिस स्टेशंस वन बाय वन. एंड अल्टीमेटली वो जो है उन्होंने पूरा एरिया को डिस्टर्ब कर दिया, पूरा अपने कब्जे में ले लिया. देन आर्मी पैरामिलिट्री पुलिस वाज डोमिनेटेड, आर्मी पैरामिलिट्री को डाला गया. बहुत सारे आर्मी के ब्रिगेड चले गए, सीआरपी बीएसएफ की बटालियन चली गई. बट यू कुड नॉट कंट्रोल इट बिकॉज एक गांव इस पहाड़ पे है, दूसरा गांव इस पहाड़ पे, तो आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे. तो आई वाज वंडरिंग कि लोग इनको कैसे बचाया जाए. लाइक मी मेरे जो बाकी कुलीग्स थे वो भी सारे सोचते थे हाउ टू प्रोटेक्ट दीज पीपल, बिकॉज वो मैसेकर करते थे और कम्युनिटी वाइज खड़ा करते थे. एक दिन 26 जनवरी के एक दिन पहले किश्तवाड़ बस जा रही थी, सबको नीचे उतारा, कम्युनिटी वाइज खड़ा किया, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी उनको सबको गोली मार दी. So, like that, segregate करके, because they want कि इसे communal tension पैदा हो जाए between the two communities. तो तभी होगी जब एक community को target करोगे. तो इस तरह हम सभी जो colleagues थे सोचते थे कि इसका हल क्या निकलेगा. Ultimately एक दिमाग में idea आया कि मैं actually एसएसपी उधमपुर था 95 की बात है ये, अगस्त सितंबर की. तो हमारा एक गोटा पुलिस पोस्ट थी इन डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, जो आज रियासी डिस्ट्रिक्ट उसी से कार्ब आउट हुआ, उसका आजकल इट इज अ पार्ट. तो वहां रात को हमला हुआ टेररिस्टों का. तो मुझे रात को मैसेज आया, तो आई रैंग अप डिप्टी कमिश्नर, उसको बोला कि ऐसे ऐसे अटैक हुआ पुलिस स्टेशन पे. तो वहां जब मैं मौके पे गया तो वहां के लोगों ने डिमांड किया कि हमारे दो आदमियों को टेररिस्टों ने मार दिया, और अगर हमारे पास हथियार होते, हमारे पास वो जो घास काटने वाली उसको बोलते हैं दराटी डोगरी में, और कुल्हाड़ी होती है जिसे लकड़ी काटते हैं, हमने उससे टेररिस्टों को मारा. टेररिस्टों के पास AK-47 राइफल्स थी. तो कहते हैं अगर हमारे पास गन होती तो हमने उनके दो मार दिए, उन्होंने हमारे दो लोगों को मार दिया. अगर हमारे पास गन होती हम उनके ज्यादा लोग मार सकते थे, तो आप हमें हथियार दीजिए, दे डिमांडेड. तो व्हेन आई वेंट टू द स्पॉट, मैंने वो जो दो लोग शहीद हुए सिविलियन गांव के लोग, उनकी बेटियों को पुलिस में कांस्टेबल भर्ती कर लिया, रिक्रूट कर लिया. और उन्होंने 10 राइफलें मांगी थी, तो मैंने अपने हेडक्वार्टर से पूछा, तो उन्होंने कहा दे दो. तो मैंने 10 राइफलें उनको बांट दी. दैट बिकेम फर्स्ट बागनकोट गांव था ये जिस पर अटैक हुआ था, सिविलियन पर अटैक. तो उनको 10 राइफलें दी, तो दीज 10 राइफल्स बिकेम फर्स्ट विलेज डिफेंस कमेटी. एंड लोगों को ट्रेनिंग दी, उनको वेपन्स दी, एमुनिशन दिया, ट्रेनिंग दी. एंड बाद में गवर्नमेंट ऑफ J&K ने इसको फॉर्मल ऑर्डर निकाल के रेगुलराइज किया कि हर एक डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट SP ऐसी विलेज डिफेंस कमेटीज बनाएगा जिसमें 10 लोग होंगे, उसमें से 3 को स्पेशल पुलिस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होगा, उनको इतने इतने पैसे मिलेंगे, उनको हथियार 20 rounds दिए जाएंगे, एक 303 राइफल, दीज वर प्राइमरीली 303 राइफल्स. तो इस तरह से VDCs बनाई गई. ये आप देखिए विलेज डिफेंस के जैसे ये ट्रेनिंग करते हैं, इस तरह की पुलिस ने इनको ट्रेनिंग दी. और डोडा के पहाड़ी इलाकों में इनका बहुत बड़ा योगदान है. अगर ये नहीं होते आज पूरा जम्मू प्रोविंस से पहाड़ी इलाके से एथनिक क्लिनजिंग माइनॉरिटी की हो जाती जिस तरह कश्मीरी पंडितों की हुई. तो लेकिन इन लोगों ने टेररिस्टों से पूरा मुकाबला किया,
लड़कियों क्यों ने?
लड़के लड़कियां सब मिलके. और कई जगहों पर इनका एम्युनिशन खत्म हो गया एंड दे वर ओवररन बाय टेररिस्ट और इनको मार दिया उन्होंने. और कई जगह पे ये लड़ते रहे क्योंकि हर गांव में पुलिस या आर्मी या पैरामिलिट्री नहीं पहुंच सकती, उसको आने में 4-5 घंटे लगते थे. तो तब तक ये होल्ड करते थे, इनके पास 50-50 round होते थे. तो जब तक आर्मी या सीआरपी या पुलिस आती तो इनका एक बहुत बड़ा रोल है विच कंट्री शुड रिकॉग्नाइज. लेकिन इनके खिलाफ कुछ पॉलिटिकल कश्मीर बेस्ड पार्टीज इनके खिलाफ बोलती है बिकॉज उनको लगता है दे आर बिकमिंग ए रोड़ा अगेंस्ट दिस. तो कुछ लोग मैं समझता हूँ वो मिस्टेकन है. क्रिमिनल एलिमेंट कहीं भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि अगर बीडीसी 50 लोग होंगे उसमें से एक खराब होगा डजंट मीन ऑल बीडीसीज आर बैड. तो उसका सजा वो उसको कानून के तहत मिलेगी. लेकिन बीडीसीज का बहुत बड़ा रोल है माइग्रेशन रोकने में
जी.
तो ये इंपॉर्टेंट है और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रियलाइज करती है एंड प्रेजेंट गवर्नमेंट इज स्ट्रेंथनिंग देम. इनको अब विलेज डिफेंस गार्ड्स बोलते हैं. और इनको अब पहले 1500-1500 रुपया एसपीओ को मिलता था, 3 SPO एक बीडीसी में होते थे, तो 4500 रुपया 10 लोगों में बंटता था, 450-450. नाउ इनका पैसा रेज किया गया, 18-18 हजार भी मिलता है.
बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ जेएनके पुलिस.
यस, दे वर फोर्स मल्टीप्लायर्स.
आप और कुछ दिखाना चाहोगे सर? बिकॉज वी ऑलमोस्ट रीच द एंड ऑफ द एपिसोड. इज देयर समथिंग यू वांट टू शेयर विद द यूथ?
यूथ को मैं यही कहना चाहता हूं कि आप ये ना सोचें कि ये जम्मू कश्मीर की लड़ाई है, वही लड़ते रहेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है. ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान का प्लान, आप जम्मू कश्मीर दे भी दोगे ये रोकेगा नहीं, ये आपको हिट करेगा. चाहे आप कोयंबटूर में हैं, चाहे आप गुवाहाटी में हैं, चाहे आप गांधीनगर गुजरात में हैं या मुंबई में हैं, जिस आइडियोलॉजी का ये है कि हमने गजबाए हिंद करना है, वो कश्मीर देने से भी बंद नहीं होने वाला. तो टेक इंटरेस्ट इन दिस, थिंक दिस इज एज योर बॉर. और आप सबको अलर्ट रहना चाहिए और हमें इस का मुकाबला करना है अगर अपनी एग्जिस्टेंस और अपने संस्कृति को बचाना है. और मैं समझता हूँ जो वास्ट मेजॉरिटी है इंडियन मुस्लिम्स की, दे अंडरस्टैंड दिस, दे आर बेसिकली ऑल गुड पीपल. हम ही में हमारे ही भाई, उनकी पद्धति डिफरेंट है पूजा की, लेकिन उसमें कुछ कट्टरपंथी हैं जो गलत विचारधारा रखते हैं. उनको किस तरह से ये देश ला सकता है अपने साथ ताकि ये देश बचा रहे. अगर ये देश बचेगा तो सब बचेंगे, देश नहीं रहेगा कुछ भी नहीं रहेगा.
अगर आप जैसे लोग हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, वी फील अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस.
थैंक यू.
सो एसपी वैद्य सर, सीरियसली थैंक यू, मजा आ गया आपके साथ. आई सल्यूट यू फॉर योर सर्विस फॉर द कंट्री मेनली. पर बहुत कम लोग आप के जितनी इवेंटफुल लाइफ जीते. सो ऑल आई वांट टू से इज यू हैव लिव्ड इट आउट फॉर अ रीजन व्हिच आई एम श्योर यू आर रियलाइजिंग एट दिस पॉइंट. बट इट वाज अ प्लेजर हियरिंग ऑल योर एक्सपीरियंसेस एंड योर पर्सपेक्टिव. लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट. जय हिंद सर.
जय.
तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड. बताइए कैसा लगा. बहुत सारे आर्म्ड फोर्सेस के एपिसोड करे हमने, बहुत सारे पुलिस फोर्स के साथ एपिसोड्स बनाए. वे ऑलवेज लुकिंग फॉर मोर रियल हीरोइक स्टोरीज फ्रॉम इंडियाज़ रीसेंट हिस्ट्री. अगर आपके पास कोई गेस्ट रिकमेंडेशंस है इसी जॉनर में तो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए. अंटिल नेक्स्ट टाइम, TRS एंड द होल टीम विल बी बैक. लॉट्स ऑफ लव टू यू. भारत की असली हिस्ट्री पॉडकास्ट से जानिए, ना कि ट्रेडिशनल मीडिया से, बिकॉज दिस इज़ द ओनली प्लेस यू विल फाइंड द ट्रूथ. लॉट्स ऑफ लव एंड जय हिंद.